You are listening to SRM Podcast, podcast for everyone.
दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल। मैं हूं आदित्य और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अभिषेक। हेलो अभिषेक।
हेलो आदित्य,
कैसे हैं आप?
बढ़िया हूं, आप कैसे हो?
मैं भी बिल्कुल बढ़िया। और मेरे साथ मौजूद है मेरे दूसरे साथी अनुभव। हेलो अनुभव।
हेलो आदित्य।
तो कैसा रहा आपका त्यौहार?
मेरा त्यौहार बहुत अच्छा रहा, मेरी बहनों ने मुझे अच्छी अच्छी राखियां भेजी और साथ में कई सारे गिफ्ट थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे।
जी जी, तो पिछला हफ्ता काफी इम्पोर्टेंट था, एक तो रक्षाबंधन का त्यौहार था, दूसरा एक और बड़ी घटना घटी, क्योंकि इसे घटना ही बोलेंगे क्योंकि ये कई साल बाद ऐसा फिर से हुआ, कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की कमिटी की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो यानी कि भारत में एक नई एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत हो चुकी है, जिसको जिसमें सबसे पहले तो मेन एजेंडा ये हुआ कि MHRD को का नाम बदल के उसका नाम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इस पे न्यूज चैनलों ने काफी ज्यादा मजा भी लिया कि क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है कि मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। पर उसके सिवाय काफी ज्यादा बुनियादी बदलाव भी आए हैं, जैसे कि जो अभी हम एजुकेशन हमारे सिस्टम हमारे में जो थी कि 10+2 था, तो उस स्ट्रक्चर को बदला गया, और कई सारे ऐसी बातें जिनके बारे में विशेषज्ञों का कहना है जो कि एक रेवोल्यूशन ला सकती हैं हमारे आगे के समय में शिक्षा के जगत को लेकर के। तो इस हफ्ते के पॉडकास्ट में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अभिषेक के साथ। तो अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो है क्या, और ये एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ती है देश में?
थैंक यू आदित्य। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है। तो एजुकेशन पॉलिसी एक सिद्धांत और एक नीति बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा किसी सिद्धांतों के बेस पे। इस सिद्धांत के हिसाब से अगर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे चल सकता है। और वो सिद्धांत क्या हुआ, जैसे एक बार अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले हमारे अगर नई एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी वो अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी। उस समय 1820s की बात है, जब एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट का डिबेट चल रहा था कि भाई भारत की एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजी में होनी चाहिए या हिंदी में होनी चाहिए। तो उस समय लॉर्ड मैकलॉय की कमेटी बनी और उन्होंने फेवर किया कि भाई भारत की एजुकेशन पॉलिसी ऐसी हो जिसमें कुछ लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए और वो मासेज के ऊपर और रूलर्स के ऊपर एक तरह से माध्यम का काम करे, कम्युनिकेशन करने का माध्यम का काम करे, कम्युनिकेट कर सके हम उनसे। तो और इस कंसेप्ट को उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम दिया
जी,
कि पहले एक कुछ लोगों को एजुकेट किया जाए, उसके बाद उन एजुकेटेड लोगों से के थ्रू हम मासेस से कम्युनिकेट करें, और वो मासेस उन एजुकेटेड लोगों से थोड़ा बहुत जो भी सीखे उसको उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम बोला। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत बोल दिया। तो कोई भी एजुकेशन पॉलिसी एक सिद्धांत पे बेस्ड होती है कि भाई उनके पीछे मोटिव क्या है। तो उसी तरह एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, और ऐसे लॉज, ऐसे कानून और ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे नर्सरी से लेके, मतलब अगर देखा जाए तो 3 से 18 साल तक के बच्चे और उसके बाद कॉलेज का जो एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन होता है, इस सब इसी पे डिपेंडेंट होता है कि आगे बच्चे किस तरह पढ़ाई करेंगे, क्या वो आगे चल के क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, और किस तरह उनका भविष्य कैसे तय होगा, किस तरह वो अपने सपनों को पूरा कर पाए, ये सारी चीजें एजुकेशन पॉलिसीज में होती है।
जी जी।
और इसके अलावा अगर हम इतिहास की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि लॉर्ड मैकलॉय की एजुकेशन पॉलिसी जो 1835 में आई थी, उसने सिर्फ यही डिसाइड किया कि जो एजुकेशन पॉलिसी होगी वो इंग्लिश, जो एजुकेशन होगी वो इंग्लिश में होगी। उसके बाद जो 1854 में जो भारत की सबसे मेन एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसको हम वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं, वो सबसे मेन एक तरह से क्या कहते हैं उसे, मेन एजुकेशन पॉलिसी है वुड्स डिस्पैच 1854,
जो एक ब्रेक थ्रू आया है।
हाँ, जो ब्रेक थ्रू आया, मतलब जिसे कहते हैं वाटरशेड मूवमेंट जिसे कहते हैं। तो
उसको मैग्ना कार्टा भी कहते थे, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन।
हाँ, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जिसे बोलते हैं। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी बहुत जो शुरुआत की जो एजुकेशन होगी बच्चों की अर्ली प्राइमरी स्कूल की, वो होगी वर्नैकुलर लैंग्वेज में, मतलब जो बच्चा जिस भाषा को नॉर्मली बोलता है उस भाषा में होगी। और हाई स्कूल की जो एजुकेशन होगी वो होगी वर्नैकुलर एंग्लो वर्नैकुलर में, थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी अंग्रेजी, मतलब थोड़ी सी वर्नैकुलर अपनी भाषा और थोड़ी सी अंग्रेजी भाषा, और उसके बाद जो हायर एजुकेशन होगा वो पूरी तरह से एंग्लो मतलब इंग्लिश में होगी। तो वुड्स डिस्पैच ने जो ये उस समय की जो नीति अपनाई थी वो लगभग आज भी चलती आ रही है हमारे देश में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, सबसे बड़ी बात, जब भारत आजाद हुआ तो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो जो आई थी 1968 में, ठीक है
जी।
और उसके बाद दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, तो लगभग 34 साल बाद हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। और इसका मेन मकसद है कि 34 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, और जो मार्केट की डिमांड है, वर्कर्स या लेबर्स की डिमांड है, या किसी भी तरह का जो एम्प्लॉयबल पीपल है उनकी डिमांड है, वो बहुत चेंज हो चुकी है 34 सालों में। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, इन सब चीज़ों में ज़्यादा बढ़ावा जा रहा है, चाहे वो आईटी बूम हो। तो इन सब चीज़ों में जब लोग आ रहे हैं, तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जब मशीन लर्निंग आएगी, जब ऑटोमेशन ज़्यादा ऑटोमेशन की ओर हम ज़्यादा जाएंगे, तो मैन पावर को वहाँ से छटनी होगी। तो वो मैन पावर किस तरह अपना आगे का भविष्य तय करें, उनके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लाना बहुत आवश्यक हो गया था, ताकि वो इस तरीके की पढ़ाई हो जो आगे चल के उनको एक तरह से एम्प्लॉयबल और एक तरह से जॉब गिवर और जॉब टेकर दोनों बना सके।
जी जी जी। तो मतलब कि इस एजुकेशन पॉलिसी का मकसद ये है कि समाज में जैसे जैसे पढ़ाई के ढंग बदले हैं, क्योंकि अभी वो पारंपरिक तरीके से पढ़ना केवल पढ़ाई पढ़ाई नहीं रह गई, अभी कई सारी नई चीजें भी आई हैं, तो उसके मद्देनजर ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। तो अनुभव, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि अभिषेक ने भी बताया कि 34 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई, तो जो मौजूदा एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या त्रुटियां हैं, उसके क्या डिमेरिट्स हैं जिसकी वजह से एक नई एजुकेशन पॉलिसी की हमें एक जरूरत पड़ी?
आदित्य, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी, मैं अगर खाली एक शब्द में इसको बोलना चाहूँ कि ऐसी क्या त्रुटियां थी जिसकी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक कॉन्सेप्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड का था, कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है और इतने यंग ब्लड इतना ज़्यादा है, तो हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज है, जिसके बल पर हम वी कैन बी द मोस्ट एडवांस नेशन बाई कैपिटलाइजिंग दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज होगा कि हमारे जो यूथ हैं उनकी जो एजुकेशन और उनका नेशनल डेवलपमेंट में जो हिस्सा होना चाहिए वो हो नहीं रहा, मतलब देयर इज सर्टेन फ्लॉज इन द एजुकेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ऐसा क्यों हो रहा है दैट अभी इतने सारे बेरोजगार हैं और हमारे देश के इतने सारे लोग जो कि PhD करके भी क्लास 3 क्लास 4 की नौकरी ज्वाइन करें, तो ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज हैं। उसमें जो सबसे पहला फ्लॉ है वो है कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है हमारे देश में, जिसको आप चॉक एंड टॉक मेथड भी कह सकते हैं, कि टीचर्स बच्चों को आके बोर्ड पे चॉक से लिखवाते हैं और बोलते हैं और वो नोट्स बनाते हैं चले जाते हैं, तो ये जो चॉक एंड टॉक मेथड है उससे बच्चों को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खो देते हैं। तो एक जो टीचर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की जो एजुकेशन मेथोडोलॉजी है, स्कूल का जो करिकुलम है, वो उसको ओवरहॉल करने की जरूरत है, ताकि स्टूडेंट टीचर एंगेजमेंट बढ़ सके। एक पहला ये फ्लॉ था। दूसरा फ्लॉ ये था कि हमारे देश में प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं हो रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि बच्चे जो भी, आप पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि आप जो भी पढ़े उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, तो लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज जो था वो एजुकेशन सिस्टम को और रियल लाइफ को एक ब्रिज की तरह नहीं आ पा रहा है, तो एक ये फॉल्ट था। और जो दूसरा फॉल्ट है हमारी एजुकेशन, इस खासकर जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें जो की स्किल्स इंसानों में होनी चाहिए टू बी अ गुड ह्यूमन और टू बी एन इफेक्टिव ह्यूमन, जैसे हमारी मेंटल हेल्थ है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, सेक्स एजुकेशन है, इन सब पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था। तो उसी की वजह से आप देखिए कि हमारे देश के जो इंडिकेटर्स है, जो मैथमेटिक्स में हमारे जो स्कूल के बच्चों के जो परफॉर्मेंस है और लिखने और बोलने की जो परफॉर्मेंस है, वो बाकी खासकर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनसे काफ़ी पीछे है। और एक और जो मुझे बहुत बड़ा सा ड्रॉबैक लगता है और जिसको बीच बीच में गवर्नमेंट ने थोड़ा सुधारा था, वो क्या था कि रोट लर्निंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि रट्टाफिकेशन करो, गुड ग्रेड्स, मतलब ग्रेडिंग और जो ये परसेंटेज सिस्टम है, तो हर आदमी एक उसी रैट रेस में भागा जा रहा है कि हमें अच्छे परसेंटेज लाने हैं, वो एक बहुत बड़ी कमी थी। और एक चीज मुझे और जो कि सोसाइटी में धीरे धीरे क्रीप इन हो गई कि प्रॉफिटियरिंग, मतलब एजुकेशन को एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस की तरह एस्टेब्लिश किया गया, तो जो जिनके पास भी ज्यादा पैसा था वो बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ने लगे, और जो गरीब बच्चे थे वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में थे उनमें पढ़ने लगे। तो हो गया रहा है कि धीरे धीरे सोसाइटी में एक क्लास डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। उसकी वजह से जो ओवरऑल जब एक आदमी अपना प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन खत्म करके 18 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो एक इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा और एक प्राइमरी का पढ़ा बच्चा, दोनों की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है।
जी जी जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो जैसे कि अनुभव ने अभी बताया कि ये खामियां हैं, ये त्रुटियां हैं, तो अभिषेक जो मौजूदा एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या है एक्स्ट्रा, क्या नया है?
हाँ, वही उस पर डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें मेनली वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक स्कूल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन, और ये किस तरह एड्रेस करती है इन सब चीज़ों को वो देखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो जैसे एक बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जो क्लास डिवाइड आ जाता है एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चों को और एक इंटरनेशनल स्कूल से पढ़े हुए बच्चों में, तो वो सब चीज़ें क्या कैसे एड्रेस कर रही है वो हम देखते हैं। पहले हम स्कूल एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले तो इसमें क्या क्या टारगेट हैं, क्या क्या का टारगेट रखे हुए वो हम देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो इसका टारगेट है कि 2030 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है स्कूल एजुकेशन में
जी,
प्री स्कूल टिल सेकेंडरी, मतलब अगर हम प्री स्कूल देखा जाए तो 3 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं जिसको हम किंडरगार्टन भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वहाँ से लेके 12वीं तक का बच्चा, वहां पर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 100% हो जाए 2030 तक, ठीक है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और टीचर्स का जो लेवल होता है एक इंटरनेशनल स्कूल में और एक नॉर्मल सरकारी स्कूल में, उसको कैसे एड्रेस करना है कि जो टीचिंग होगी वो मैंडेटरी होगी कि वो 4 साल का जो टीचर बनेगा वो उसके पास उसको मैंडेटरी हो जाएगा आगे चल के कि उसने 4 ईयर्स ऑफ बीएड किया हो, जो बीएड कोर्स हो जाएगा वो 4 ईयर्स का हो जाएगा एक्सक्लूसिव फॉर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और उसके अलावा जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में वही आगे चल के, मतलब अगर क्या कहते हैं, अगर बच्चा कोई चाहता है कि वो साथ में काम करे और पढ़ाई करे तो उसके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। अभी क्या होता है कि 8वीं तक अगर बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं है तो 8वीं के बाद वो ITI करने चला जाता है और बाकी की एजुकेशन उसका छूट जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं, अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, अगर बच्चा चाहता है 6ठी से वोकेशनल एजुकेशन चाहता है और पढ़ाई भी चाहता है साथ साथ में, तो उसको दोनों चीज मिलेगी 6th क्लास से ही। वोकेशनल एजुकेशन मतलब वही हो गया जैसे नॉर्मली जो हम दिनचर्या में आम दिनचर्या में देखते हैं, या फिर ऐसी स्किल उसको डेवलप करना ताकि जैसे वेल्डिंग हो गई, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, ये सब छोटे छोटे लेवल से शुरुआत करेंगे, वो 6th क्लास से ही शुरू हो जाएगा। उसके अलावा उसकी पढ़ाई भी चलती रहेगी, ठीक है
जी जी जी।
और एक इसमें सबसे बड़ा बदलाव आया है वो जैसे हमारे यहाँ 10+2 सिस्टम होता था अभी तक, मतलब 10वीं तक बच्चे सारे बच्चे सेम कोर्स पढ़ते थे, ठीक है, और उसके बाद प्लस टू, मतलब इस 10+2 का मतलब है 10th तक सब सेम होगा, प्लस टू में 11th-12th में जाके चेंजेस हो जाएंगे
जी जी।
अब नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि 5+3+3+4, मतलब 3 से लेके करीब 8 साल तक के बच्चा सेम पढ़ेगा, ठीक है, 3 से लेकर 8 साल तक का बच्चा, ये हो गया 5 ईयर्स का स्पेन। उसके बाद 8 से 11 साल तक का बच्चा, मतलब जो उसमें कक्षा आती 3 से 5 तक की, वो सेम चीज पढ़ेगा जिसको हम प्रिपरेटरी स्कूल बोलते हैं, 8 से 11 साल तक का बच्चा। उसके बाद मिडिल स्कूल आएगा जिसमें 6ठी से 8वीं तक का बच्चा सेम चीज पढ़ेगा, या सेम तरीके का जो पैटर्न होगा एजुकेशन सिस्टम का वो होगा। उसके बाद जब सेकेंडरी स्कूल आएगा, जो हमारे पास 11th में बच्चों के पास चांसेस रहते हैं डाइवर्स फील्ड में जाने के, वो नई एजुकेशन पॉलिसी के में 9th क्लास से ही शुरू हो जाएगा। 9th क्लास से ही बच्चा अगर चाहता है कि अगर ह्यूमैनिटीज की तरफ ज्यादा जाना चाहता है, साथ में मैथ्स लेना चाहता है, तो वो 9th क्लास से ही शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा उसको जरूरी नहीं कि 11वीं में ही जाके वो अपना स्ट्रीम चूज करें। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि अगर उसने साइंस ले लिया तो साइंस ही पढ़ेगा, साइंस के साथ अगर वो ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहता है या वो खेलकूद पे काफी मतलब खेलकूद को भी अपना एक सब्जेक्ट बनाना चाहता है, तो जो पहले क्या होता था ना खेलकूद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर अलग को करिकुलर एक्टिविटीज,
हाँ, हाँ,
उन सबको सेपरेट रखा जाता था, उनको थोड़ा हीन भावना से देखा जाता था, उनको ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती थी बल्कि इनको परसेंटेज या मार्क्स दिखाए जाते थे।
हाँ, जी, ठीक है? हाँ, जी.
जैसे हमारे एचयू पीडब्ल्यू होता था तो हमको ग्रेड मिल जाता था एबीसीडी,
हाँ, हाँ,
और बाकी जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होता था उनमें हमें हमको मार्क्स मिलते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अगर बच्चा खेलकूद में भी जाना चाहता है तो वो भी एक सब्जेक्ट हो जाएगा और उसमें भी बच्चों को उतने ही मार्क्स मिलेंगे, उतनी ही प्रायोरिटी मिलेगी उस सब्जेक्ट को जितनी बाकी सब्जेक्ट्स को मिलती है। तो अभी जो डिफरेंसेस था अलग अलग स्ट्रीम का लेना या अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को जो हीन भावना से देखना का जो चलन था वो पूरी तरह से ये एजुकेशन सिस्टम एड्रेस कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी को कैसे एड्रेस कर रहा है, जैसे इंटरनेशनल स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे दी जाती है, सरकारी स्कूल में नहीं होती है, तो इन्होंने क्लस्टर अप्रोच अपनाने की बात करी है कि जो एक एरिया के 9-10 स्कूल होंगे उन सबको मिला के एक क्लस्टर बनाया जाएगा, उन क्लस्टर के लिए हर चीज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ठीक है, इस तरीके की जितनी भी फैसिलिटी जो एक नॉर्मल स्कूल में होती है इंटरनेशनल स्कूल्स में या अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में वो सारी इन 10 स्कूलों के क्लस्टर को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये सब सारी चीजें एड्रेस कर रहा है। उसके अलावा एक चीज और हुई है इसमें कि जो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं करीब, उनको भी वापस लाने का इसमें वो है कि उनके हिसाब से उनको पढ़ा के और उन्हीं के हिसाब से उनको उसी क्लास की कैटेगरी में डालेंगे वो लोग, ठीक है
जी।
तो मेन ये डिफरेंस हो गए, ये जो स्कूली शिक्षा में ये सब चीजें इंक्लूडेड करी गई, ठीक है
जी जी जी।
और बाकी एक चीज और इसमें ध्यान दिए जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, मतलब क्या होता है ना अगर मान लो बच्चे का अगर नींव ही अच्छा नहीं है, नींव जिस जो कहते हैं ना सरकारी स्कूल में बच्चा दुख के दूध तीख के तीन ऐसे करके पढ़ा पड़ता है और उसको कुछ पता नहीं रहता कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, उसकी नींव अच्छी नहीं रहेगी तो आगे चल के वो क्या हायर एजुकेशन क्या वोकेशनल ट्रेनिंग करेगा। तो जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है मतलब पढ़ने की क्षमता और गुणा भाग करने की क्षमता, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत उन्होंने बोली, क्योंकि एक प्रथम करके एक हमारा एक एनजीओ है जो ASER निकालता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से तीसरी का बच्चा ना पहली का कक्षा का सवाल करीब 60% बच्चे तीसरी कक्षा के 60% बच्चे पहली कक्षा की बुक ना पढ़ पाते हैं ना पहली कक्षा के सवाल गणित के सवाल कर पाते हैं, ठीक है
जी।
तो ये जो फाउंडेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग करने की उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। उसके अलावा जो इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही है, जो डिफरेंसेस ना इक्वलिटी आए और इंक्लूसिव आए, तो एक ताकि सारे बच्चों में समानता हो और सारे बच्चे जब 12वीं के पास पास निकले तो इस किसी के अंदर हीन भावना ना हो कि भाई मुझे इस चीज में मैं कमजोर हो गया उस चीज में कमजोर हो गया, ठीक है
जी, जी।
तो ये इस तरह से स्कूल एजुकेशन सिस्टम को ये बदलाव की ओर लाती है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
तो मतलब कि कोशिश ये की जा रही कि जो स्कूली बच्चे हैं तो उनको बराबर का मौका मिले हर एक चीज में, और ऐसा नहीं रहे कि अगर कोई जैसे 11वीं में पहुंचते कोई कॉमर्स ले लेता था और वो उसको मैथ्स भी पसंद है उसको साइंस भी पसंद है पर वो नहीं जा सकता था वो बाध्य था, पर अब वो भी पढ़ सकता है, तो यानी कि उसको हर एक फील्ड में जाने का मौका पूरा दिया जाएगा।
और सबसे बड़ी बात जो रोट लर्निंग का जो इशू था शॉर्टकमिंग्स थी पहले,
हाँ, हाँ,
इसमें क्या कर दिया है कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग मतलब अगर बच्चा कुछ चीज पढ़ रहा है तो उसको अप्लाई कैसे करेगा नॉर्मल लाइफ में,
हाँ,
उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब कर करके वो सीखे और जो सीखा है वो उसको जीवन में कैसे अप्लाई करे, एक तो होगी क्रिटिकल थिंकिंग जो सीखा है उसको जीवन में कैसे अप्लाई करेगा नॉर्मल डेली लाइफ में, और सीखते सीखते वो कैसे जीतेगा जिसको कैसे करते करते वो कैसे सीखेगा या ज्ञान प्राप्त करेगा उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग दिया गया नाम, ठीक है, ये दोनों चीजों में जोड़ दिया गया।
जी जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि ये नई नई चीजें सरकार लाने की कोशिश कर रही है और पूरी उम्मीद में है कि ये नई चीजें बुनियादी चीजें बदली जाएंगी, बुनियादी बदलाव लाए जाएंगे।
तो मैं अनुभव से एक चीज और जो स्कूल एजुकेशन में छूट गई है वो ये है कि देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी से पकड़ पाते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस, और जितना ज़्यादा वो लैंग्वेजेस सीखते हैं उतनी ज़्यादा उनका दिमाग चलता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम 3 लैंग्वेजेस बच्चा सीखने की कोशिश करे, जो उसमें से 2 इंडियन लैंग्वेजेस लैंग्वेज हो और 1 फॉरेन लैंग्वेज हो, बस।
हाँ जी हाँ जी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये सरकार चीजें करने की कोशिश कर रही है, मतलब कि उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये चीजें डाली हैं कि ऐसा करना चाहिए और एक सेट टारगेट रखा है कि 2030 तक के कुछ एजेंडा रखें कि ये 100% जैसे कि एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर हो जानी चाहिए। तो मैं अनुभव से पूछना चाह रहा हूँ कि जो सरकार ने काफी अच्छा प्रपोजल दिया है, पर इस प्रपोजल में और मौजूदा चीजों को देखते हुए जो ऑलरेडी पिछले 34 सालों से चला आ रहा है, तो हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है?
आदित्य, इस पॉलिसी में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज का चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, वो जो मुझे लगता है कि इसमें बोला गया कि 5वें क्लास तक जो है आप अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में मीडियम ऑफ एजुकेशन, यू वांट टू हैव अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज टिल क्लास 5th। वो मुझे लगा कि जो ट्रांसफर होकर एम्प्लॉयज एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, तो उनके लिए वो चीज थोड़ी सी दिक्कत भी होगी। जैसे अगर कल को मेरी शादी हुई और मेरा बच्चा है और यहाँ पर वो किसी और मीडियम में पढ़ रहा है, तो वहाँ अगर वो 3rd-4th में गया तो उसको आसाम या फिर और किसी वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, तो उस चीज को टैकल नहीं किया गया सही से। मुझे लगा कि जो एक 3 लैंग्वेज का जो एक कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चों को 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, तो कई सारे जो स्टेट्स हैं, खासकर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, उन्होंने उसका काफी विरोध किया है। दूसरा इशू मुझे ये लगा, और इसमें तीसरा इशू मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो ये जो क्लस्टर सिस्टम, जैसे बोला कि एक क्लस्टर स्थापित करेंगे, तो अभी हमारे पास करेंटली कोई ऐसा इतनी एरिया नहीं है। जैसे मान लो कि एक शहर है, वहां पर कई सारे छोटे छोटे स्कूल्स हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा स्कूल नहीं है जिसके पास इतना बड़ा क्लस्टर हो जहां पर इंटरनेशनल स्कूल जितनी फैसिलिटी डेवलप की जाए। तो वो क्लस्टर कहाँ बनेगा, वो सब क्लब होके बच्चे इतनी दूर, अगर मान लो शहर के बाहर वो ऐसा क्लस्टर बना रहे हैं जहाँ पे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जा रही है, कि दैट वुड मेक अ गवर्नमेंट स्कूल बॉय इक्विवेलेंट टू अ इंटरनेशनल स्कूल चिल्ड्रन, वो कैसे करेंगे, मतलब हाउ एंड वेयर दे वुड डेवलप दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मतलब वो जो क्लस्टर भी कर रहे हैं, तो क्लस्टर में भी हाउ दे वुड डू द इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग, वो एक मुझे बहुत बड़ा इशू अभी भी लग रहा है। प्लस जो एक और मुझे चीज लगी कि ये सब जो ओवरऑल प्रोसेस है ना, जैसे अभी कह दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो इट वुड टेक एटलीस्ट 10-15 years टू कम इन टू होल पिक्चर, तो सारा टर्निंग भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि गवर्नमेंट हाउ दे आर शिफ्टिंग टू क्लस्टर और क्या करेंगे, मतलब हाउ वुड दे स्विच टू थिंग्स। जैसे जीएसटी में भी ऐसे हुआ ना कि उन्होंने कुछ लेके आए, अभी तक भी जीएसटी हैज नॉट कम fully into the picture कि हर आदमी कैसे implement कर रहा है, वो new education policy कैसे करेंगे, clustering कैसे करेंगे, ये सब कैसे करेंगे, उसका road map आना बाकी है।
तो मुझे भी ये चीज लग रही थी कि जैसे कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला है कि शुरुआत की पढ़ाई वर्नाकुलर में होनी चाहिए, तो हमारे क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि अंग्रेजी की शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, भले हम कितना भी स्ट्रिक्ट रहे इस पॉइंट पे कि नहीं हमको अपने मातृभाषा में पढ़ना है, पर अंग्रेजी की शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको ग्लोबल लेवल पर काम करना है। इवन भारत में भी आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो अंग्रेजी की शिक्षा बहुत जरूरी। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे मैं ISC बोर्ड से पढ़ाऊँ, तो जब मैं 6th class में था तो मेरे कई बच्चे, जैसे कि होता है कि 5वीं तक बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो जब वो हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में आए, तो मैंने खुद महसूस किया कि उन लोगों की जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आ गया और उनको 1-1.5 साल अपने आप को संभालने में ही लग गए। तो एक चीज तो ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज लगी कि मतलब कि आपको साथ में साथ उसके बाद, ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे पढ़ाई वाले बच्चों को उसमें थोड़ा सा दबते हुए उस वक्त देखा है, क्योंकि 1.5-2 साल तो उनको खुद को डिस्कवर करने में ही लग गया कि हिंदी की किताबें पढ़ रहे थे, ये देख रहे थे, अचानक से ये क्या हो गया। और जब हम अपने पापा लोगों से बात करते हैं तो उनके अभी हिंदी मीडियम में था, वो बताते हैं कि वो 6th class में ABCD पढ़ रहे थे, तो उसकी वजह से उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं बचपन में भी, उनके भी टाइम में, कि अंग्रेजी की शिक्षा देर से आने से। तो एक ये चीज तो मुझे अपने लेवल पर लगती कि वरना कूलर वाला भी थोड़ा सा इनको देखना चाहिए था कि आगे, या आगे देखना चाहिए कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि हमने काफी ज्यादा स्कूली शिक्षा के बारे में बात किया, मैं अभिषेक से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने हायर एजुकेशन के बारे में क्या सोचा है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में।
हाँ, हायर एजुकेशन में अभी भारत की स्थिति यह है कि केवल जो 100 में से अगर 100 में अगर 100 बच्चों ने 12वीं पास करी है तो सिर्फ 27 बच्चे ही हायर एजुकेशन करते हैं उनमें से। मतलब अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखें हायर एजुकेशन का तो केवल 27% है।
जी,
ठीक है।
हाँ।
तो सरकार का टारगेट है कि जो ये 27% है GER उसको 50% करना है 2035 तक हायर एजुकेशन में। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, इसमें जो सबसे बढ़िया मुझे बात लगी हायर एजुकेशन में वो जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलाउड है इसमें। मान लो अगर बच्चा पहले तो उनका टारगेट है कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन हो वो 4 साल का हो। ठीक है, और उसमें क्या है कि अगर मान लो बच्चा पहला साल की पढ़ाई पूरी करता है ग्रेजुएशन की तो, और उसको किसी तरह से बाहर निकलना पड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा।
जी जी।
और अगर 2 साल के बाद 2 साल की वो पढ़ाई करता है और उसको किसी कारणवश कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो उसको एक डिप्लोमा का वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब डिप्लोमा कोर्स। अगर वो 3 साल की पढ़ाई करता है तो उसको डिग्री कोर्स मिल जाएगा, और वो चारों साल की पढ़ाई पूरी कर देता है ग्रेजुएशन में तो उसको मिलेगा मतलब डिग्री विथ सम, मतलब विथ रिसर्च, डिग्री विथ रिसर्च करके
जी।
तो उसका फायदा ये होगा 4 साल की पढ़ाई का, जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टर ऑफ फिलोसफी करता है, एमफिल करता है, उसके बाद वो PhD की तरफ जाता है रिसर्च की तरफ, अब वो सारा हट जाएगा। अगर वो सीधे BA इन रिसर्च करता है, डिग्री इन रिसर्च करता है, कोई भी वो BA BTech कुछ भी हो, तो उसके बाद सीधे वो रिसर्च की तरफ जा सकता है, सीधे वो PhD कर सकता है। ठीक है
जी जी।
और इसके अलावा ये भी है कि मान लीजिए बच्चा ने 1 साल पढ़ाई करी, उसने सर्टिफिकेट का कोर्स सर्टिफिकेट मिल गया उसको 1 साल का, या फिर 2 साल की पढ़ाई करी उसे डिप्लोमा मिल गया, आगे चल के जीवन में दोबारा वो पढ़ना चाहता है तो दोबारा वो जो उसको जो मिला है डिग्री वो दोबारा उसमें ऐड हो जाएगी और उसकी पढ़ाई वही 3rd ईयर या फाइनल ईयर से कंटिन्यू शुरू कर सकता है।
मतलब कि जैसे होता था कि कई बार पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से लोगों को छोड़ देना पड़ता था, तो ऐसा हो जाता था कि वो BTech कर रहे हैं मान लीजिए 4 साल का, तो 3 साल तीसरे साल के बाद जब होते तो उनका पूरा 3 साल बर्बाद हो गया। पर अभी वो चीज
अब नहीं होगी, अब वो 3 साल के बाद अगर हटता है, 2-3 साल कुछ और करना चाहता है या पारिवारिक परिस्थिति की वजह से नहीं पढ़ पाता है तो आगे चल के वो बाद में फाइनल ईयर आके कर सकता है और उसको उसकी अपनी डिग्री मिल जाएगी BTech की। ठीक है
जी।
तो ये मुझे सबसे बढ़िया जो बदलाव लगा वो एक तो ये लगा। उसके अलावा स्कूली शिक्षा के तहत इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होगा। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा BTech कर रहा है साथ साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है या हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो उसको वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और वो किस तरह प्रोवाइड की जाएगी कि जो स्टैंड स्टिल करके मतलब IIT है तो केवल वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ऐसे IIT को भी एक तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस बनाए जाएंगे। IIT हो चाहे AIIMS हो चाहे कोई भी हो, इस तरीके के जितने भी कॉलेजेस होंगे उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। मतलब अगर IIT में केवल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं होगी, उसमें इतिहास भी पढ़ाया जाएगा, उसमें भूगोल भी पढ़ाया जाएगा, उसमें कॉमर्स भी पढ़ाया जाएगा।
तो क्या ये ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि जैसे मेजर्स और माइनर्स होते हैं विदेशों में उस तरीके से रहेगा?
हाँ, उस तरीके से रहेगा। और मल्टी जितने भी मैक्सिमम कॉलेजेस होंगे जो भी अच्छे हैं या उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स प्रोवाइड की जा रही है हायर एजुकेशन में बच्चे को इसके साथ और भी मेजर और माइनर कर सके जैसे आपने बताया, तो वो सुविधा प्रोवाइड की जा सके उनको। ठीक है
जी जी जी।
एक बदलाव मुझे जो अच्छा लगा एक तो ये चीज लगी, उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो एफिलिएशन सिस्टम है जैसे मान लो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है उससे बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड रहते हैं
जी जी।
वो 15 सालों में उनका टारगेट है कि 15 सालों में जो ये एजुकेशन सिस्टम ये जो एफिलिएशन सिस्टम है खत्म हो जाए, जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब ऑटोनोमस हो, खुद का एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज हो, खुद अपना सब कुछ डिसाइड करें
जी जी।
एक तो ये है। उसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ इनोवेशन पे बहुत कम करीब 0.7% ऑफ द GDP हम लोग खर्च करते हैं इनोवेशन में हमारे इंडिया
जी। हाँ।
और अगर हम विदेशों की बात करें तो अमेरिका चाइना लगभग 2-5% के बीच में ये लोग इनोवेशन में अपनी GDP का खर्च करते हैं, बल्कि उनकी GDP देखिए कितना हाई है। उस हिसाब से भारत का जो हम लोग जो इनोवेशन पे खर्च करते हैं बहुत कम करते हैं। तो इसीलिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके संस्था बनाई जा रही है जो रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने का काम करेगी, ठीक है
जी, जी।
और ओवरऑल इसमें क्या टारगेट रखा गया है, हालांकि ये टारगेट पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी वो भी रखा गया था कि टोटल एजुकेशन पे खर्चा कम से कम 6% होना चाहिए, ठीक है 6% ऑफ द जीडीपी, लेकिन आज भी वो करीब 3 से 4% के आसपास है। अगर स्टेट और सेंटर दोनों का खर्चा मिला दिया जाए तो 3 से 4% के आसपास है। तो अभी जो टारगेट है उन्होंने दोबारा से वही 6% वाला सेट किया है, होपफुली वो पूरा कर सके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इनइक्वालिटी है एजुकेशन सिस्टम में उसको एक तरह से खत्म करने का इनका उद्देश्य है, और उसके लिए उन्होंने नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो कि ऐसे बच्चों के लिए जो कि वल्नरेबल है, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड जिनको अब दिव्यांग बोला जाता है या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, इस तरीके के बच्चों के लिए इन्होंने नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना करी है, और ताकि समानता आए पढ़ाई में, कोई बच्चा किसी भी कारणवश पीछे ना रहे, ठीक है। और इसके अलावा महिलाओं के लिए इन्होंने जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया है महिलाओं की इच्छा की शिक्षा के लिए, ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी बनाए, स्पेशल एजुकेशन जोन्स उनके लिए होंगे जो बच्चे डिसएडवांटेज हैं और उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए पढ़ाई के लिए
जी,
तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनेंगे और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड बनेगा
जी।
तो ये थोड़ा ओवरऑल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर हायर एजुकेशन।
तो एक बार मैं बस जरा सा ये जो हमारे लिसनर्स हैं उनसे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे काफी बार हम लोग ने बोला इनइक्वालिटी एजुकेशन में, जो इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से होती है कि कई कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जात पात से हटके कभी उनकी पढ़ाई के मापदंड पर भी बांट देते हैं। जैसे कि कल्चर रहा है कि जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो उसको कह देंगे कि वो कम समझदार है और बीटेक वाला या बीएससी वाला ज्यादा समझदार है। उसके साथ साथ हम उसमें भी आगे एक और कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि कई बार की इसने एडेड कॉलेज से या कहीं सस्ते कॉलेज से पढ़ाई की है उसको हम दूसरी निगाह से देखते हैं, किसी ने किसी बहुत महंगे कॉलेज से पढ़ाई की है तो हम उसको दूसरी निगाहों से देखते हैं। तो सरकार की एक ये भी कोशिश है कि जब ये एजुकेशन पॉलिसी आए तो उसमें सब लोग एक समान दिखें, उसमें कब कोई ऐसा ना रहे कि किसी को हम लोग उसकी पढ़ाई के दम पे या उसने जिस कॉलेज से पढ़ाई की या जिस कोर्स से पढ़ाई की उसके कम ज्यादा आके, तो यानी सब लोग एक समान रहें
जी। तो और उस अभी जैसे कि हम लोग चूंकि हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो मैं जाते जाते एक सवाल अनुभव से ये पूछना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज को इम्प्रूव करने के लिए अभी हम लोग ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सरकार ने क्या प्रपोजल्स दिए हैं?
आदित्य, यूनिवर्सिटीज को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने, मुझे दो प्रपोजल्स गवर्नमेंट के बहुत अच्छे लगे। पहला ये कि जो पुराने एजुकेशन सिस्टम की फॉल्ट क्या थी, और जैसे हम लोग अभी भी आपस में बात करते हुए रियलाइज करते हैं कि हमारे देश में जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे कोई कटिंग एज रिसर्च नहीं आ रहा है। जैसे अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना की वैक्सीन बनाई
जी,
लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज का कल्चर ऐसा है कि वहां से अच्छा ठीक ठाक हैंड सैनिटाइजर तक नहीं आ रहा।
जैसे कि आप लोग जैसे कि दोनों IIT से पढ़े हैं तो ज्यादातर चीजें IIT के ही इर्द गिर्द भारत में अभी घूमती है, अभी वो सेंट्रलाइज, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हर कॉलेज अपने में इस ऑटोनॉमस हो गया कि वो खुद से भी रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ये चीज की काफी ज्यादा कमी है।
हाँ, और एक इस चीज की कमी, और दूसरा जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है और इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन बहुत पुअर है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं और हम लोग जो नए आविष्कार करते हैं उसमें हमारा रैंकिंग बहुत पीछे है, मतलब एज कम्पेयर टू US और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो चाइना है, उनका जो ओवरऑल रिसर्च है पीयर रिव्यू जर्नल्स में जो उनके नंबर ऑफ अप्लीकेशन है, जो उनके पेटेंट्स हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा है और हमारे उस मामले में कम है। तो
जी जी,
गवर्नमेंट ने एक चीज जो बहुत अच्छी की, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है कि गवर्नमेंट ने भारत में यूनिवर्सिटी का कल्चर जो है वो डिवाइड किया है इस वक्त तीन हिस्सों में। उन्होंने बोला कि हम तीन तरह के हायर एजुकेशन देंगे और वो तीन तरह की यूनिवर्सिटीज रहेंगे। एक नंबर वन रहेगी रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो अभी क्या है, जैसे हमारे कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जैसे IITs है तो हम उसमें जाके पढ़ते भी हैं, कुछ लोग वहां से पढ़ के पढ़ाने भी चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि पढ़ के नौकरी करते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो रिसर्च में भी चले जाते हैं, मतलब एक ही इंस्टीट्यूट में तीनों चीजें हो रही हैं
जी जी।
तो उसमें ओवरऑल किसी भी एक चीज पे बहुत पर्टिकुलर फोकस नहीं आ रहा है कि बच्चे ऐसे नहीं निकल रहे जो कि इंडस्ट्री में भी काम करने के लिए एकदम लायक हैं, या फिर ऐसे बच्चे भी निकल रहे जो एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे, रिसर्च पे काम कर रहे। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या रूल किया है कि गवर्नमेंट सबसे पहले एक तरह की यूनिवर्सिटी रहेगी जिसे रिसर्च यूनिवर्सिटी बोलेंगे, वो देश में लगभग 150 से 300 वैसी यूनिवर्सिटीज रहेंगी जो कि पीएचडी, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उन सब में जो भी नए रिसर्च आ रहे हैं उन पे फोकस करेगी। दूसरी यूनिवर्सिटीज वो टीचिंग यूनिवर्सिटीज रहेंगी, और उसमें जो कॉलेजेस रहेंगे लगभग 5000 से 25000 वैसे कॉलेजेस रहेंगे
जी।
उनका उनका काम क्या रहेगा कि वो खाली जो करिकुलम बेस्ड जो हमारी लर्निंग है उन पर फोकस करेंगे
जी जी।
और जो तीसरा जो है वो है कॉलेज सिस्टम रहेगा, उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज पे ध्यान दिया जाएगा ताकि वो बच्चे डायरेक्ट जो है वोकेशनली फिट हो सके। तो ये तीन तरह की जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम किया वो मुझे पसंद आया। और दूसरी चीज जो कि 2013 से जिसपे कोशिश चल रही थी कि जो जो IVY लीग्स की यूनिवर्सिटीज है, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है, तो हमारे देश में अभी भी बहुत ही चुनिंदा लोग हैं ऐसे जो ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड और इन सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, या फिर जो आउट ऑफ द ब्लू एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोग हैं वही जा पाते हैं। तो गवर्नमेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, तो देखिए वो कितना होता है। लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड और इस सब यूनिवर्सिटीज के हमारे देश में ब्रांच खुलेंगी तो हमारे देश को भी कटिंग एज रिसर्च और एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर के साथ पढ़ने का और उनसे सीखने का मौका मिलेगा।
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि उससे ज्यादा उससे हमको जो मौजूदा एटमोसफेयर है हमारा पढ़ाई का उससे ज्यादा एक्सपोजर भी मिलेगा हमको जब ये चीजें नीति आए नई नीतियाँ आ जाएंगी। तो अभिषेक से मैं जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब सवाल क्या कि क्या वो कोई चीज इसमें ऐड करना चाहते हैं कि जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, उसके साथ साथ एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है और ये एजुकेशन पॉलिसी से भी जुड़ा है कह सकते हो, कह सकते नहीं भी जुड़ा है, मेरे मन में सवाल ये रहता है कि जैसे कि पहले जो हमारे यहाँ पढ़ाई हुआ करती थी, मेरा मानना है ये कि वो ज्यादातर रॉट लर्निंग होती थी और चीजों को मेमोराइज कराने के लिए पढ़ाई की जाती थी और उनकी काफी जरूरत भी रहती थी क्योंकि तब हमारे पास इतनी एक तरीके से कह सकते हैं कि इतनी स्टोरेज की चीजें नहीं थी, तो इंसान को मन में याद करा दिया जाता था कि वो चीजें वो फॉर्मूला हो वो कॉन्सेप्ट हो वो सब उसके दिमाग में रहे। पर चूंकि अभी हमारे पास मोबाइल फोन्स है ठीक है और हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास हर प्रकार की डिवाइस है, तो हम हर चीज को स्टोर भी कर सकते हैं और उल्टा हमको कोई भी चीज जाननी हो तो हम उस चीज को जान भी सकते हैं तुरंत, जैसे कि हमको किसी भी चीज का फॉर्मूला देखना है कुछ भी समझना है तो हम तुरंत नेट पर उसको देख सकते हैं। तो ऐसे में जब ऑलरेडी हर चीज हमारे पास है और वो हमसे केवल 2-4 सेकंड की दूरी पे है, ये भी नहीं कि हमको उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, जैसे लोग थीसिस लिखते थे तो ना जाने कब लखनऊ में PhD करते थे और कलकत्ता जाते थे लाइब्रेरी में से किताब ढूंढने, हमें वो सब ना हमारे हाथ में, तो पढ़ाई असलियत में होनी किस चीज की चाहिए?
पढ़ाई सबसे जरूरी है कि पढ़ाई तो अगर हम फिलोसफी की बात करें तो पढ़ाई तो सबसे जरूरी ये हो कि वो अच्छा एक नागरिक बनाए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और आप अच्छे से बिहेव करना नहीं चाहते हैं, सड़क में जा रहे हैं, रोड रेज कर रहे हैं और ये सब, मतलब ये सब पढ़ाई तो आपको एजुकेशन एक समझदार व्यक्ति बनाए, एक अच्छा नागरिक बनाए, सबसे पहली पढ़ाई तो इस चीज की होनी चाहिए। उसके अलावा जैसा कि आपने बोला कि अब हर चीज मोबाइल में ही है, हर चीज थोड़ी कुछ सेकंड की बात है और आपके सामने हाजिर हो जाएगा, तो इसीलिए जो मैंने पहले भी बताया था जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मान लो अगर हमने कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसको उससे सीखे कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रट लिया लेकिन हमको पता नहीं कि फॉर्मूला ये यूज कहाँ होगा। जैसे ब्रिज बनाना है तो ब्रिज के लिए हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला पढ़ लिया और सारी चीजें पढ़ ली, मैकेनिक्स पढ़ ली उसकी, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा कि ब्रिज ये बना कैसे
जी।
तो वही चीज हमने ये पढ़ लिया और जैसे अभी अभी भी शुरुआत हो रही है कि ओपन बुक एग्जाम्स होंगे, तो इसका टारगेट यही है कि जब चीजें सब कुछ साथ में है तो ओपन बुक का एग्जाम का मतलब, और उसमें ओपन बुक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बुक खोली, आंसर लिख दिया। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो आपने बुक में लिखा है उसको आप कैसे रियल जीवन में इम्प्लीमेंट करें, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो वाकई में हमारे देश में आगे चल के उस तरीके की सोच उत्पन्न हो जाएगी जो अच्छे इनोवेशन लाए और जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं जुगाड़, जैसे अब हमारे यहाँ पीपीई और इन सब का जो एकदम से इनोवेशन शुरू हुआ, या फिर बहुत से आईआईटीज और बाकी जो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने बहुत तेजी से काम करा ये COVID-19 की जो टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाने में।
जी, जी, जी.
इस तरीके की चीजें हर एक छोटे छोटे लेवल पे भी जब होने लग जाएंगी तो तब हमारा सही में हमारा शिक्षा के मायने में हम आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि एक बार रघुराम राजन ने भी, जो हमारे पूर्व गवर्नर रहे हैं RBI के, उन्होंने बोला कि भारत अभी भी बहुत पीछे है क्योंकि हर 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय है पूरे विश्व में।
जी जी,
अगर भारत की पॉपुलेशन देखा जाए तो हर 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय है। अगर भारतीय बाकी में एक अच्छा भारतीय लोग बाकी में अच्छा काम कर रहे हैं तो हर 6 में से 1 नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारतीय होना चाहिए।
बिल्कुल सही।
हर 6 में से 1 जो नया इनोवेशन हो रहा है वर्ल्ड में वो इंडिया में होना चाहिए।
जी जी,
ठीक है। हर 6 में से 1 ओलंपिक का गोल्ड मेडल, सही कह रहे हो, वो भी इंडिया का होना चाहिए। हर 6 में से 1 एस्ट्रोनॉट इंडिया का होना चाहिए। तो और हर 6 में से 1 जो नई नई अच्छी अच्छी जो वर्ल्ड क्लास जो नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं वो इंडिया के होने
चाहिए।
इंडिया के होने चाहिए। तो रियलिटी में देखा जाए तो हम लोग जिसको बोलते हैं ना कि वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप में, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो वो कुछ नहीं है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फिर फ्लिपकार्ट को उसने खरीद लिया, या फिर हमारा ओला है उसको दीदी ने खरीद लिया चाइनीज कंपनी ने।
जी, जी।
तो इस तरीके का जो हो रहा है उसको, इसलिए हमारे को एजुकेशन सिस्टम ऐसे बनाना है कि हम वर्ल्ड क्लास में वर्ल्ड में कम्पीट कर सके।
जी,
ठीक है
जी, बिल्कुल
ये मेरे को कहना
है। जी जी, तो अनुभव मैं आपसे भी जाते जाते एक एंड नोट लेना चाहूंगा इस पर।
आदित्य, मैं जाते जाते बस ये कहना चाहता हूँ कि अभिषेक ने इतनी अच्छी बात बोली कि हम लोग 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी, और एजुकेशन और किसी भी कटिंग एज रिसर्च में वी आर नॉट इवन 1/20। तो हमारे देश को जरूरत है कि हम लोगों की जो फंडिंग गैप है वो बहुत ही पुअर है। मतलब जो US है, यूरोपियन कंट्रीज, उनका जो एजुकेशन सिस्टम में टोटल द परसेंटेज ऑफ GDP दे पुट इन, इट्स मोर देन 5-6%, और वी आर नॉट इवन 2%। तो मेरी ये दिल से इच्छा है कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ GDP है वो बढ़ाया जाए 6% से भी ज्यादा, 8-10% किया जाए, ताकि हमारे देश में जो हमारा यंग टैलेंट है जो यहाँ से पढ़ने के बाद अपनी बाकी की हायर एजुकेशन लेकर US में जाता है, वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज में CEO बनते हैं, कई अच्छी कंपनियां खुद फाउंडर भी बनते हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में नामी डॉक्टर्स बनते हैं, वो हमारे देश में रहें और हमारे देश को एनरिच करें, हम लोगों की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारें। और एक जो हमारे देश में जो हमारे देश की खामियां हैं, जैसे हमारे देश की सबसे बड़ी ये खामी है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा रिसर्च नहीं है, जो पर हेक्टेयर यील्ड है उन है वो बहुत पुअर है। तो वो हमारे वो सब रिसर्च हमारे देश में आए हैं, जैसे इसराइल ने, उनकी कमी थी कि उनके यहाँ ज्यादा नहीं था एग्रीकल्चर, तो उन्होंने उस पर काम किया। तो हमारे देश की जो कमियां हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स है, उन सब चीजों में बहुत ही तेजी से काम हो, और वो तभी हो सकता है जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम में पैसे लगाएं, अपने जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उनमें एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी पे आनी चाहिए। जब वो हो जाएगा तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा।
जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने बोली। जब हम शिक्षा में ध्यान देंगे, जब हर भारतीय शिक्षा को पहली निगाह से देखेगा, उसके लिए शिक्षा के ऊपर और कोई प्रायोरिटी नहीं होगी, तभी हम विश्व स्तरीय बातें कर सकते हैं, विश्व गुरु भारत तभी बन सकता है। वरना जैसा कि आपने देखा कि नीतियां आती हैं जाती हैं, हर 5 साल पर सरकार बदलती है, हर 2-3 साल पर एक नई नीति आती है, कागज के बंडल आते हैं, 10,000 पन्ने रहते हैं, पर वो जमीन पर जब उतरेंगे तभी कुछ बात बनेगी, वरना ये नई एजुकेशन पॉलिसी भी केवल UPSC के एग्जाम के सवालों तक सीमित रह जाएगी। सरकार को, या अभी जो सरकार है या आने वाली जो भी सरकार है, उसको नियत भी रखनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव आने के लिए। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में हमारे साथ।
शुक्रिया आदित्य, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
और हमारे जो भी लिसनर्स हैं, मैं उनको ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट भी है जिसका नाम है srmpodcast.com, पॉडकास्ट के बाद में एक S भी आता है। हमारी इस वेबसाइट पर जाइए और हमारे और भी कई सारे पॉडकास्ट हैं, उनको ज़रूर सुनिए। अगर आपने हमारे इंडिया ऑन कॉल का पुराना एपिसोड नहीं सुना है तो उनको भी जाकर के सुनिए। ऐसी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें, बहुत ही ज्ञान वाली बातें आपको वहाँ पर मिलेंगी। अब जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, Spotify, गूगल पॉडकास्ट, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट या JioSaavn, वहाँ पर जाइए, इस पॉडकास्ट को फॉलो करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
धन्यवाद।